गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय की व्याख्या कर रहे हैं। आज उन्होंने कर्मयोग की कुंजी समझाई है, विभिन्न पक्ष कर्मयोग के समझा रहे हैं। क्रिया ही कर्म है, हर क्रिया कर्म नहीं है। हर कर्म तो क्रिया है लेकिन हर क्रिया कर्म नहीं। संत महात्मा थोड़ा सा यहाँ भेद लाते हैं। जैसे व्यक्ति नन्हा बच्चा है, शिशु है, बड़ा होता है, इसमें क्रिया तो है पर कर्म कोई नहीं। बचपन से जवानी में प्रवेश करता है, क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म नहीं है। बुढ़ापा आता है, क्रिया तो हो रही है कर्म कोई नहीं। हृदय धड़कता है, क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म नहीं है। भोजन पच रहा है, उसका विसर्जन हो रहा है मल के रूप में, क्रिया तो है कर्म नहीं है। क्रिया कर्म कब बनती है? जब उसमें कर्तापन आ जाता है। बाल अवस्था से जवानी में प्रवेश करने में कर्तापन का कोई स्थान नहीं है, क्रिया हो रही है कर्म नहीं। कर्म उसे ही कहा जाता है जहां क्रिया के साथ कर्तापन जुड़ जाता है, कर्तृत्व जुड़ जाता है, डूअरशिप जिसमें जुड़ जाती है उसे कर्म कहा जाता है। यही कर्म बंधन का कारण बन जाता है, इसे निर्बंध करना ही कर्मयोग है। जहां कर्तापन होगा, जहां कर्म के साथ ये होगा, मैंने ये कर दिया, मैं ये करवा रहा हूं इत्यादि इत्यादि, जहां आपने देवी सज्जनों अपने कर्तापन की स्टैंप लगा दी, आपके मुख से निकल गया मैं, बस वही कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। यही कर्म यदि दूसरों के लिए किया जाता है, अपने लिए ना करके, अपने लिए करना तो स्वार्थ है अतएव बंधन का कारण, दूसरों के लिए कर्म करना निस्वार्थ हो जाता है अतएव मोक्ष का साधन, इसी को कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए ना करके दूसरों के लिए कर्म करना, अपने लिए सुख ना चाह के दूसरों के लिए सुख की कामना करना, अपना उपकार ना चाह के दूसरों का उपकार चाहना, अपना हित ना चाह के दूसरों का हित चाहना, ये सब कर्मयोग के अंतर्गत हैं। आज यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न पक्ष गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यज्ञ की बड़ी सुंदर परिभाषा भगवान श्री ने समझाई है, स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट की है। ये संसार कहते हैं अदान बलिदान, अदान प्रदान लेन देन पर ही चल रहा है। एक व्यक्ति देता है, दूसरा लेता है, इत्यादि इत्यादि, इसी से संसार चल रहा है। जहां परस्पर सहयोग की भावना नहीं रहती, वहां व्यक्ति व्यक्ति न रह के तो मानव मानव न रह के दानव कहता है। आज एक बहुत बड़े सेठ हैं, वे अक्सर विद्वानों को, मानवों को और देवताओं को निमंत्रण देता है, भोजन करवाता है। जहां मानव साधकजनों भोजन के लिए बुलाए जाते हैं, सेवा भाव से जहां भोजन करवाया जाता है, देवताओं को ना भी बुलाया जाए तो भी वे वहां पधारते हैं। सो यूं समझिएगा कि मानव और देवता तो हमेशा भोजन के लिए आते ही हैं, बुलाए ही जाते हैं, एक दानव को कभी नहीं बुलाया जाता। आज इस सेठ ने, जो बहुत परोपकारी माना जाता है, कर्मयोगी कहिए, कर्मयोगी माना जाता है, इसने आज मानव दानव एवं देव तीनों को बुलाया है, आप मेरे घर भोजन के लिए पधारिएगा। भव्य आयोजन किया हुआ है, खूब प्रबंध किया हुआ है। राक्षसों ने कहा, आप लोग संसारी कैसे हो, हम किस चीज में कमी हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बलवान हैं हम, शायद मानवों से भी ज्यादा और देवताओं से भी ज्यादा, कई बार हमने देवताओं को हराया है, ज्ञान की भी हमारे पास कमी नहीं। जब हम प्रजापति के पास गए थे तो हम तीनों इकट्ठे गए थे, मानव दानव एवं देव, और प्रजापति ने हम तीनों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार उपदेश दिया था, मानो हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर आप लोग हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो, ये अन्याय है आप लोगों का, संसारियों ये अच्छी बात नहीं है, आप मानव को बुलाते हो, देवों को बुलाते हो, लेकिन राक्षसों को कभी आमंत्रित नहीं किया, आज आपकी मेहरबानी है, आपने हमें बुलाया है और हम आ गए हैं, पर हम इतनी बात कह देते हैं, यदि आप जी का अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर इसी प्रकार से बना रहा तो हम भड़केंगे। लाला ने कहा, इस वक्त कृपया क्रुद्ध ना होजिएगा, भोजन तैयार है, आज सबसे पहले आप भोजन कीजिएगा, ताकि आपकी ये शिकायत दूर हो, अव्वल तो हमें बुलाया ही नहीं जाता, यदि हमें बुलाया जाता है तो हमें पहले भोजन कभी नहीं करवाया जाता, हमारी बारी कहीं अंत में जाके आती है, आप पहले देवताओं को खिलाते हो, फिर मानवों को खिलाते हो, और फिर यदि बचता है तो फिर हमारी बारी आती है। लाला ने कहा, आपकी इस शिकायत को दूर करने के लिए आज आप पहले भोजन के लिए बैठिएगा, एक शर्त है, पंक्तियों में बैठ जाइएगा, आमने सामने जितने भी आप 150 आए हुए हैं सब बैठ जाइएगा, पर मैं एक शर्त से भोजन में आपको खिलाऊंगा, अब अभी पहले आपके दोनों हाथों पर 3-3 फुट लंबी लकड़ी की फट्टी मैं बांध दूंगा, मंजूर, बांध दीजिएगा दोनों हाथों पर, देखो मेरी तरफ, इन दोनों बाजुओं पर 3 फुट लंबी फट्टी लाला ने बंधवा दी है, भोजन की थालियां उनके आगे परोसी गई हैं, लाला स्वयं परोस रहा है ताकि इनकी हर शिकायत जो है वह दूर हो, खूब तरह तरह के भोजन बनाए हुए हैं, तरह तरह की सब्जियां इत्यादि सब कुछ थाली भर भर के, मीठा भी है खाने को, सब कुछ आगे रख दिया है। राक्षस लोग अपने हाथ से उठा तो सकते हैं लेकिन अपने मुख में नहीं डाल सकते, फट्टी बंधी हुई है। लाला की चाल देखिए, किस तरह से एक कर्मयोगी, किस तरह से एक संत दूसरों को समझाता है, दोनों हाथों पर फट्टी बंधी हुई है, ये कोने यहां से झुक नहीं सकती, मुड़ नहीं सकती, तो अपने मुख में वे राक्षस कुछ डाल नहीं सकते, सभी के सभी राक्षस भूखे हैं, और जब भूखे होते हैं तो द्वेष की भावना, निराशा की भावना इत्यादि इत्यादि पैदा होती है, आपस पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, एक दूसरे के सामने सब बैठे हैं, सभी के सभी राक्षस भूखे, देवताओं की बारी आई, देवताओं के साथ भी ऐसा ही किया है, उनके भी दोनों बाजुओं पर 3-3 फुट लंबी पट्टी फट्टी बांध दी है ताकि उनका भी इस तरफ से हाथ मुड़ न सके, लेकिन मानव कहिए, दानव कहिए, दिव्यता कशी है। आखिर देवियों सज्जनों, कुछ न कुछ भिन्नता तो है, नहीं तो परमात्मा सबको मानव नाम दे देता। कुछ को देवता नाम दिया है, कुछ को मानव नाम दिया है, कुछ को दानव नाम दिया है, कुछ कारण तो होगा। मेरे राम के विभाजन में कोई गलती तो नहीं हो सकती, कोई अन्याय तो नहीं हो सकता। देवता बैठे हैं एक दूसरे के सामने, ऐसे ही पंक्ति में बिठाया है। इन्होंने देखा कि हम अपने मुख में नहीं डाल सकते, लेकिन किसी दूसरे के मुख में तो डाल सकते हैं। सामने वाला जो बैठा हुआ है उसके मुख में तो डाल सकते हैं, बस इधर वाले उनके मुख में डालते हैं, उधर वाले इनके मुख में डालते हैं, और सारे के सारे देवता पेट भर के स्वादु भोजन खाया। जो दूसरे को पालना जानता है वह कभी भूखा नहीं रह सकता। याद रखना इन बातों को, जो अपने पेट को पालने के साथ साथ दूसरे का पेट पालना भी जानता है वह व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता। देवता देखो ये जानते हैं कि दूसरे के मुख में कैसे डाला जाता है। आज यही किया है ना, अपने मुख में तो किसी ने नहीं डाला, ये दूसरे के मुख में डालते हैं तो दूसरा इनके मुख में डालते हैं तो डालता है, तो दोनों का पेट भरा हुआ है। जो मानव दूसरे के मुख में डालना नहीं जानता उसे ही दानव कहा जाता है, दानव बन जाता है। जो सहयोग करना नहीं जानता, जो सहयोग देना नहीं जानता वह दानव है। जैसा अभी आपने देखा आपस में ही लड़ झगड़ के तो वह भूखे हैं, उनका पेट भी भरा नहीं है और भूखे भी हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा भी आपस में कर रहे हैं। आज भगवान श्री यही बात समझा रहे हैं, मेरी सृष्टि का दारोमदार आधार आदान प्रदान है, लेना देना, परस्पर लेना देना, इसी पर सृष्टि सारी जो है वह चल रही है। बहुत से स्थानों पर साधक श्रेणु अभी भी ये परंपरा है लोप होती जा रही है। जब 1988 में मैं मनाली गया था उस वक्त तक ये प्रथा वहां जीवित थी, अब तो वे भी अमेरिकी की चपेट में आगे हुए हैं, अतएव ये प्रथा वहां भी खत्म होती जा रही है। नहीं है क्या करते थे, सबके अपने अपने खेत हैं और सब स्वयं ही किसानी करते हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है। महिलाएं अक्सर खेती का काम काज करती हैं, और किसी के पास राजमा की फसल ज्यादा हो जाती है, किसी के पास कोई सब्जी ज्यादा हो जाती है, किसी के पास पशु ज्यादा हैं तो उनके पास दही ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा होता है उतना वह औरों को बांट देते हैं, और जिनको बांटा जाता है, जो उनके पास ज्यादा होता है, वह उसके बदले में उनको वस्तु दे दी जाती है। इस प्रकार से गांव के सिलसिले ही नहीं, परमात्मा की सारी सृष्टि जो है वह इसी प्रकार से चलती है। हम जाने न जाने वह दूसरी बात है, लेकिन भगवान श्री ने आज इस बात को स्पष्ट किया है गीता जी में। तो समय हो गया है साधक जनों, अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हम सब कर्मयोगी हैं, इसे याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने हम सब के लिए और शब्द प्रयोग किया है, हम सब भक्तिमय कर्मयोगी हैं, भक्तिमय कर्मयोगी, इस शब्द को बहुत याद रखिएगा और फिर इसे अपने जीवन में बसाइएगा, तो आप भी गीता जी के आदर्श पुरुष बन सकते हैं। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।